अष्टपाहुर लेक्चर नंबर 4 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः प्रणामो
जिनवरवसहस्रवर्तमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन।
यह कुंदकुंद आचार्य द्वारा लिखित अष्टपाहुर जो शास्त्र है उसके ऊपर जो स्वामी जी के प्रवचन है उस शास्त्र में से पेज नंबर 18 पर हम आए हैं। 18 यहाँ जो प्रश्न लिखा है वहां से हम चालू करते हैं। यहाँ तो ये बात चल रही थी कि जो सम्यक दर्शन होते हैं वो सम्यक दर्शन के साथ 8 अंग भी होते हैं और उसको लक्षण भी कहने में आता है। अभी वहां जो बताए थे कि शंका जो है उसके साथ साथ भय भी होता है, तो वो उस पर यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछ रहे हैं कि भय प्रकृति का उदय तो 8वें गुणस्थान तक है, उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि को भय होता ही है, फिर भय का अभाव कैसा? देखो प्रश्न क्या है, यहाँ तो कहते हैं जो सम्यक दृष्टि होते हैं उसके 7 भयों का नाश हो गया है, ख्याल में है? तो 7 भय कौन से थे याद है क्या भाई आपको? आपको याद है 7 भयों के नाम? मरण भय, वेदना भय, हाँ और कौन से याद नहीं? रोग नहीं, रोग कहाँ हुआ है? हाँ डॉक्टर साहब, हाँ आलोक भय, परलोक भय, अकस्मात, अगुप्ति, हाँ एक रह गया अरक्षा भय। देखो ये आसान तरीका ऐसा है, देखो ये बात कितनी बार मैं बोलता हूँ, दो दो जोड़ी करना पहले, इस लोक का भय, परलोक का भय, ये तो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा वेदना भय और मरण भय, अभी रह गए 3, तो 3 को अ से चालू होते हैं, अरक्षा भय, अगुप्ति भय और अकस्मात भय, नंबर कौन सा भी पहले बोलो। तो ये 7 भय जो होते हैं उसका नाश सम्यक दृष्टि को होता है ऐसा शास्त्रों में वचन कहा है, क्योंकि मैं आत्मा ही हूँ, ज्ञान स्वरूप ही हूँ, तो ये जो मुझे अभी मेरी रक्षा कौन करेगा? अरे ये सवाल ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूँ, मैं तो सत्ता स्वभावी हूँ, तो उसको अभी मेरी रक्षा कौन करेगा? ऐसा भय नहीं रहेगा, या इस लोक में कोई मुझे क्या होगा, मेरा पैसे सब छीन जाएंगे, सब मेरा माल लूट जाएगा, अरे तू तो अनंत गुणों का पिंड है जो तेरे से कभी जुदे नहीं हो सकते, ऐसा तू है, इस तरह से सब में लेना। तो वेदना जो होती है वो शरीर की होगी, आत्मा को तो वेदना होगी नहीं, तो ये इस प्रकार के भय उनके नहीं होते हैं। तो प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा कि शास्त्र में ही ऐसा लिखा है कि जो भय नामक जो नाम कर्म की प्रकृति है, हाँ सॉरी मोहनी की है, गलत बोल गया, मोहनी की जो भय नामक प्रकृति है, तो वह प्रकृति का उदय तो आठवें गुणस्थान तक है, और उसके निमित्त से सम्यक दृष्टि को भय होता ही है, फिर भय का अभाव कैसा, ये प्रश्न है, समझ में आया? तो कहते हैं कि यद्यपि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह के भेद रूप भय प्रकृति के उदय से भय होता है, तथापि उसे निर्भय ही कहते हैं। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके चौथे गुणस्थानवर्ती जीव को श्रद्धा में से भय तो निकल गया है, लेकिन अभी उसे चारित्र मोह का उदय है और उस प्रमाण में उसको भय है। और उसके बाद जैसे जैसे पंचम गुणस्थान के बाद हम देखते हैं कि असंख्यात गुणी निर्जरा होती जा रही है, असंख्यात गुना निर्जरा होती जा रही है, तो अभी जो कुछ वो कर्म प्रकृति का उदय है उसका फल इतना कोई स्ट्रांग नहीं होता है, और वहाँ कर्मों का उदय है इस अपेक्षा से उसको कहा है कि उनके भय है करके। वास्तविक भय जैसा उनके कोई बिहेवियर नहीं होता है और उस प्रकार के कोई भाव भी नहीं होते हैं। ये जैसा भय के बारे में क्या कि वो आठवें गुणस्थान तक होता है, वैसे नौवें गुणस्थान तक वेद का उदय भी बताया, लेकिन वो कर्म प्रकृति का उदय हो रहा है, लेकिन उस तरह के भाव इस जीव के होंगे नहीं। वैसे यहाँ कह रहे हैं कि भय का कोई भाव उनके होगा नहीं। तो क्या कहें, देखो, यद्यपि सम्यक दृष्टि के चारित्र मोह के भेद रूप भय प्रकृति के उदय से भय होता है, तथापि उसे निर्भय ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कर्म के उदय का स्वामित्व नहीं है। परद्रव्य के कारण अपने द्रव्य स्वभाव का नाश नहीं मानता। पहले तो मैंने कर्म के उदय का वो स्वामित्व, यानी वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं उसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा वो तो जानते हैं। और परद्रव्य का कारण मेरे द्रव्य स्वभाव का कभी नाश होगा ऐसा उनका बिल्कुल ना मान्यता है ना श्रद्धा है। पर्याय का स्वभाव विनाशिक मानता है, इसलिए भय होने पर भी उसे निर्भय ही कहते हैं। क्या कहा? द्रव्य स्वभाव कैसा है, कभी भी नाश नहीं पाता है, लेकिन पर्याय कैसी है, तो विनाशिक है, इसलिए उसको निर्भय भी कहते हैं। भय होने पर उसका उपचार भागना इत्यादि करता है। ये कौन? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती की बात कर रहे हैं। वहाँ वर्तमान पीड़ा सहन न होने से वह इलाज यानी उपचार भी करता है, वह निर्बलता का दोष है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि संदेह तथा भय रहित होने से उसके निशंकित अंग होता है। देखो, अभी यहाँ तो वो विषय है नहीं, लेकिन अभी जो हम कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में मुनियों का स्वरूप देख रहे हैं, अभी वहां ऐसा भी कहेंगे और ऐसा होता ही है कि यहाँ क्या कहा कि भय होने से उसका उपचार भागना इत्यादि करेगा। यानी मान लो कोई सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो जंगल से जाता हो और सामने कोई सिंह आदि ऐसा कोई क्रूर प्राणी आ जाए तो ये सम्यक दृष्टि झाड़ पर चढ़ के बैठेगा, भागेगा, जो कुछ करना है। लेकिन मुनिराज है, वो तप में बैठे या जाते होंगे कहीं यहाँ से वहाँ, और सामने कोई ऐसा उपसर्ग आए, कहो ऐसा कोई प्राणी आए जिनसे उनके कुछ मरण की आशंका है, जो कुछ है, तो वह अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो कहते हैं उनकी आयु अभी बाकी हो तो शेर या सिंह बाजू से चला जाएगा, लेकिन वो जब तक संकट बाहर नहीं होता है, दूर नहीं जाता है, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। इसके लिए शास्त्रों में हमें कितने कितने उदाहरण मिलते हैं। तो वो तो चारित्र से भी पक्के हैं और श्रद्धा से भी पक्के हैं। यहाँ सम्यक दृष्टि श्रद्धा से सही है, अभी चारित्र मोह है, इतनी बात समझना। फिर भी उसको कहेंगे संदेह और भय रहित है, और ऐसे को निशंकित अंग होता है। कांक्षा अर्थात वांछा, या यहाँ कह रहे हैं भोगों की इच्छा या भोगों की अभिलाषा, वहां पूर्व काल में किए गए भोगों की वांछा तथा उन भोगों की मुख्य क्रिया में वांछा तथा कर्म और कर्म के फल की वांछा तथा मिथ्या दृष्टियों के भोगों की प्राप्ति देखकर उन्हें अपने मन में भला जानना, अथवा जो इंद्रियों को न रुचे ऐसे विषयों में उद्वेग होना, यह भोगाभिलाष के चिन्ह है। यानी जो भोगों का अभिलाषी होता है उसके इस प्रकार के विचार चलते हैं। यह भोगाभिलाष यानी भोग का अभिलाष है, मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, और जिसके यह न हो वह निकांक्षित अंग युक्त सम्यक दृष्टि होता है। वह सम्यक दृष्टि यद्यपि शुभ क्रिया व्रतादि का आचरण करता है, उसका फल शुभ कर्म बंध है, किंतु उसकी वह वांछा नहीं करता। व्रतादि को स्वरूप का साधक जानकर उनका आचरण करता है, कर्म के फल की वांछा नहीं करता, ऐसा निकांक्षित अंग है। यहाँ ये सभी अंगों की बात यहाँ बता रहे हैं। अपने में अपने गुण की महत्ता की बुद्धि से अपने को श्रेष्ठ मानकर परमेय हीनता की बुद्धि हो उसे विचिकित्सा कहते हैं, यानी अपना बड़प्पन मानना। वह जिसके न हो सो निर्विचिकित्सा अंगयुक्त सम्यक दृष्टि होता है। उसके चिन्ह ऐसे हैं कि यदि कोई पुरुष पाप के उदय से दुखी हो, असाता के उदय से ग्लानी युक्त, गलत हो गया, ग्याली युक्त हो गया वो ग्लानी, तो उसमें ग्लानी बुद्धि नहीं करता, ऐसी बुद्धि नहीं करता कि मैं संपदावान हूँ, सुंदर शरीरवान हूँ, यह दीन रंक मेरी बराबरी नहीं कर सकता। उल्टा ऐसा विचार करता है कि प्राणियों के कर्मोदय से अनेक विचित्र अवस्थाएं होती हैं, जब मेरे ऐसे कर्म का उदय आवे तब मैं भी ऐसा ही हो जाऊं, ऐसा विचार से निर्विचिकित्सा अंग होता है। अब चौथा अमूढ़ दृष्टि है ना, चौथा तो कहते अतत्व में तत्वपने का श्रद्धान, यानी जो सही स्वरूप नहीं है। देखो इसका बहुत सुंदर वर्णन मोक्ष मार्ग प्रकाशककार टोडरमल जी ने किया, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना और जैसा नहीं है वैसा मानना, उसी का अर्थ यहाँ क्या क्या है। अतत्व में तत्वपने का श्रद्धान, यानी मान लो जो तत्व यानी या कोई ऐसी बात लो कि जैसा देव का स्वरूप है उसमें वैसा सच्चा है वैसा नहीं मानना, और जो अतत्व है जो खोटे हैं उनको सही मानना। तो अतत्व में तत्वपने का श्रद्धान सो मूढ़ दृष्टि है, ऐसी मूढ़ दृष्टि जिसके न हो सो अमूढ़ दृष्टि है। मिथ्या दृष्टियों द्वारा मिथ्या हेतु एवं मिथ्या दृष्टांत से साधित पदार्थ है वह सम्यक दृष्टि को प्रीति उत्पन्न नहीं कराते हैं, तथा लौकिक रूढ़ी से अनेक प्रकार की है वह निस्सार है। निस्सार पुरुषों द्वारा ही उसका आचरण होता है, जो अनिष्ट फल देने वाली है तथा जो निष्फल है जिसका बुरा फल है तथा उसका हेतु कुछ हेतु नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है, जो कुछ लोक रूढ़ी चल पड़ती है उसे लोग अपना लेते हैं और फिर उसे छोड़ना कठिन हो जाता है, इत्यादि लोक रूढ़ी है। अब आगे अदेव में देव बुद्धि, अधर्म में धर्म बुद्धि, अगुरु में गुरु बुद्धि इत्यादि देवादिक मूढ़ता है वह कल्याणकारी नहीं है। यानी हमने इसको अलग भाषा में देखा था, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता वह कल्याणकारी नहीं है। सदोष देव को देव मानना तथा उनके निमित्त हिंसादि द्वारा अधर्म को धर्म मानना तथा मिथ्या आचरणवान शल्यवान ओ मिथ्या मैंने क्या बोला ओ ओ एक ही अर्थ है आचारवान शल्यवान। शल्यवान का अर्थ क्या लेना भाई? आप क्या कहेंगे? हाँ शल्यों से सहित है, आप धनवान हो ना भाई, तो धन सहित हो ना, तो धनवान। वैसा यहाँ शल्यवान यानी क्या? शल्य से युक्त है। तो ऐसे कौन से शल्य है साहब? कितने होते हैं? बस तीन ही होते हैं। कितने होते हैं? मैं पांच बता रहा हूँ, आप तीन बोल रहे हैं। आप बिल्कुल सही है। हाँ मिथ्या शल्य, माया शल्य और निदान शल्य। देखो सामना वाला कितना कंफर्म है तो उसको जरा हम मिसलीड करेंगे तो समझ आ रही ये तो पूछ रहा है यार, तो ये तो कुछ अपन गलती तो नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसा डरना नहीं, हाँ हम परफेक्ट रहना चाहिए। सौभाग्य चंद आप नाराज होते हैं ना मेरे पर? नहीं नहीं हाँ वैसे हम आपके मन में संशय इसलिए पैदा कर रहे हैं कि अगर आप कंफर्म होंगे तो ये तो बोलते नहीं नहीं तीन ही है, आप क्या बोलते पांच है, और आप गलत बोले इसलिए मैं कब से ऐसा ऐसा कर। आपने बोले तीन बराबर पर उसमें श्योरिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छा। तो कह रहे शल्यवान परिग्रहवान, वही अर्थ है, परिग्रह से युक्त है ऐसा। सम्यक सम्यक्त्व व्रत रहित को गुरु मानना इत्यादि मूढ़ दृष्टि के चिन्ह है। अब देव धर्म गुरु कैसे होते हैं उनका स्वरूप जानना चाहिए सो कहते हैं। देखो ये सब ये जो बात है ना भाई, ये जयचंद जी छाबड़ा ने बाद में लिखे हैं, या अभी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो मूल शास्त्र में यही बात है, तो बाद में आगे स्वामी जी बताएंगे। तो कहते हैं कि अभी उनको क्या कहना है कि देव धर्म गुरु कैसे होते हैं उनका स्वरूप जानना चाहिए। अब इनकी इतनी मतलब क्या कहते हैं इच्छा है कि सभी जीवों को सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझ में आए तो निमित्त रूप से ये होने के होने से उनको सम्यक तो होगा। अब उसी में गड़बड़ है तो ऐसे जीव को सम्यक तो कहाँ से होगा? इसलिए तुम मानो या मत मानो, चाहो या नहीं चाहो, वह तो उनका स्वरूप बताए बिना नहीं रहे। देखो ये बात हम छड़ाला में भी देखते हैं, ये बात हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं कि यहाँ सत्य बात को पहले बताएंगे, वह भी किसके बारे में? देव गुरु शास्त्र के बारे में। तो कहते रागादिक दोष और ज्ञानावरणादिक कर्म ही आवरण है, यह दोनों जिसके नहीं है वह देव है। ये देव हमने देखे ना भाई, देव कितने प्रकार के होते हैं वीरेश भाई आप बताएंगे, आपने तो सुना है। देव कितने प्रकार के होते हैं? एक मिनट रुकना, आप भूल गए हम? हाँ वैमानिक देव और जो विमान में नहीं बैठते हैं, भवनत्रिक। ये हम किसकी? वो जो भवनत्रिक है वो रागादिक दोष और ज्ञानावरण कर्म जो है उससे रहित होते हैं क्या? तो हम ये देव किसकी बात कर रहे हैं कि जो देव है भगवान है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो रागादि से रहित है हा? और केवल ज्ञानावरण ही नहीं उनको। हाँ तो ऐसे देव कितने प्रकार के हैं ऐसा मेरा प्रश्न है। एक हाँ डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, आपने क्या बताया? हाँ बहुत अच्छा, आप कह रहे हैं अरियंत और सिद्ध, बहुत अच्छा। जरा जोर से बोलना भैया, मैं बहरा हूँ पहले से, बूढ़ा हूँ। हाँ तो अरिहंत के कितने प्रकार होंगे वो भी दो, कौन से कौन से? सहयोग केवली और अयोग केवली। हाँ बहुत अच्छा। और भगवान भी दो प्रकार के आपने अरहंत सिद्ध बताए, दूसरे प्रकार से आप बताएंगे उन्हीं को? दूसरे प्रकार से बताने अरहंतों को और सिद्धों को। हाँ याद आएगा। सकल परमात्मा कहो, सकल देव कहो और निकल देव कहो। तो निकल का अर्थ क्या बेन? बहुत अच्छा, आ गया आ गया, सब आ गया। ये देखो भाई, ये मैं अभी तक कितनी बार बोल चुका हूँ। अच्छा रहता है, क्योंकि हमें तो भगवान को सही समझना है ना, तो उसका स्वरूप हमारे ख्याल में होना चाहिए। तो कह रहे हैं रागादिक दोष और ज्ञानावरणादिक कर्म ही आवरण है, यह दोनों जिसके नहीं है वह देव है। अभी देव की बात ख्याल में आई साहब? उसके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं। तो थोड़ा सा और एक मजेशीर प्रश्न पूछता हूँ, जो आपको सबको आता है, कि केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये कौन से कर्मों के अभाव में उत्पन्न होते हैं? आप बता रहे? हाँ बोलो बोलो, कौन कौन से नाम बोलना मुझको, किसके किसके? सुनो, ये फला कर्म के नष्ट होने से, ये इसमें से ये चार जो हमने देखे ना, हाँ तो अंतराय से क्या प्राप्त होता है, कौन सा गुण इसमें से? अच्छा क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बहुत अच्छा। और अनंत सुख? देखो ये हमें बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, ज्ञानावरण कर्म नष्ट हो जावे तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति, दर्शनावरण नष्ट हो जाए तो केवल दर्शन की उत्पत्ति, और यहाँ चारित्र मोहनीय और उसके साथ साथ में दर्शन मोहनीय, इन दोनों का नाश होता है। यानी मोहनीय आपने डायरेक्टली बताया तो उसके सुख की उत्पत्ति होती है, निराकुलता होती है। और अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर की, ऐसे अनंत चतुष्टय होते हैं। सामान्य रूप से तो देव एक ही है, और विशेष रूप से अरहंत सिद्ध ऐसे दो भेद हैं, तथा इनके नाम भेद के भेद से भेद करे तो हजारों नाम है। क्या कहना चाहते हैं? अगर भगवान अरहंतों को और सिद्धों को हमने दो बनाया, लेकिन इनके नाम हम गिनेंगे तो हजारों नाम है। तो ये कैसा हजारों नाम है? देखो अपने यहाँ पूजन में सहस्त्र नाम पूजा नहीं, इसमें एक ही अरहंत को हजार नाम से बताया गया है। इसलिए बोलते हैं वो तो हमें ज्ञात है, हजारों नामों से अलग अलग भेद किए जाते हैं, तथा गुण भेद किए जाए तो अनंत गुण होते हैं। परम अवतारिक देह के विद्यमान घातिया कर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश करने वाले ऐसे तो अरहंत देव है। देखो यहाँ और क्या बात बताई, जो अरहंत देव है वो कैसे होंगे कि परम अवतारिक शरीर, परम यानि उत्कृष्ट, और वो परम अवतारिक शरीर कब प्राप्त होता है? उसी भव में वह जीव मोक्ष जावे तब। तो कहते हैं परम अवतारिक देह में विद्यमान घातिया कर्म रहित अनंत चतुष्टय सहित धर्म का उपदेश करने वाले ऐसे तो अनंत देव है, तथा पुद्गलमयी देह से रहित लोक के शिखर पर विराजमान सम्यक्त्व आदि अष्ट गुण मंडित अष्ट कर्म रहित ऐसे सिद्ध देव है। अभी यहाँ थोड़ा सा प्रश्न पूछना ही पड़ेगा। देखो देखो अभी ये किसकी बात चल रही है? अभी पुद्गलमयी देह से रहित लोक के शिखर पर विराजमान, हाँ जी सिद्ध भगवान, बहुत अच्छा। तो ये सम्यक्त्व आदि अष्ट गुण मंडित है, तो ये अष्ट यानी आठ गुणों से शोभायमान है, डेकोरेटेड, मंडित। तो ये आठ गुण जो सिद्धों के हैं वो कौन से हैं, मंदा आप बताएंगे? हाँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, हाँ, अनंत वीर, हाँ, वो सम्य, हाँ बोलो, हाँ, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्याबाधत्व, आप बताएंगे? मैंने भूल गए, आप बोलो साहब। अगुरु लघुत्व आपने नहीं बताया, आपने बताया, आपने बताया अपने। अभी यहाँ देखो, सिद्धों में अनंत सुख की बात नहीं बताएंगे, सम्यक तो गुण को लेंगे। हाँ साहब,
अव्याबाधा तो है ना, अव्याबाधा, अव्याबाधा में तो वही है सुख है जो अव्याबाध सुख है।
लेकिन ये यहाँ देखो ना, कहाँ गया सम्यक तो गुण के सहित, तो यहाँ क्या कह रहे देखो,
शायद सम्यक तो ऐसा लेना उसमें तो,
सम्यक तो आदि लिखा ना, तो सम्यक तो कोई हम भूल गए, बाकी सब बन गुणमंडित और अष्ट कर्म रहित। अभी ये पूछना तो एकदम बचपना होगा कि आठ कर्म कौन से, ये तो सब जानते हैं, ऐसे सिद्ध देव है, इनके अनेकों नाम है, अरहंत, जिन, सिद्ध, परमात्मा, महादेव, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध, सर्वज्ञ, वीतराग परमात्मा इत्यादि अर्थ सहित अनेक नाम है, ऐसा देव का स्वरूप जानना। यहाँ जो हमें जो अन्य देवों के नाम भी यही है ना, महादेव, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, हरि, बुद्ध, ये भले वो नाम के उनके देव हो, लेकिन ये ओरिजिनेटेड यहाँ से हैं। गुरु का भी अर्थ से विचार करें तो अरहंत देव ही है, यानी अरहंत परमात्मा को भी गुरु कहने में आता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले अरहंत ही है, वे ही साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन कराते हैं, तथा अरिहंत के पश्चात छद्मस्थ स्थान के धारक। ओह, मैं क्या बोला, ध्यान, ओह, अरिहंत के पश्चात छद्मस्थ ज्ञान के धारक, उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने वाले मुनि है, सो गुरु है। क्या कहना चाहते हैं, देखो देखो, अरहंत के पश्चात कौन है, छद्मस्थ जीव है, और वो कैसे हैं, ज्ञान के धारक है, यानी उनके सर्वज्ञ जैसा ज्ञान का उगाड़ नहीं है, एक बात नक्की कराते हैं। और फिर क्या कहते हैं, उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने वाले, उन्हीं का यानी किसका, हाँ डॉक्टर, उन्हीं का निर्ग्रंथ दिगंबर रूप धारण करने वाले, तो ये उन्हीं का यानी किसका, अरहंत का। तो एक बात निश्चित हो गई, देखो कि अरहंत भी निग्न है, दिगंबर है, दिगंबर यानी दिक यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र, दिशा ही जिनका वस्त्र है, दिगंबर है, वे कौन है, अरिहंत है, और उन्हीं का रूप जिनको है वह कैसे हैं, मुनि, सो गुरु है। तो जो गुरु होते हैं, ये हमारी शिक्षा गुरु, वो उनकी बात नहीं है, ये तो धर्म गुरु जिसको हम कहेंगे, या धर्म में जो गुरु है वो कैसे हैं, बिल्कुल निर्ग्रंथ रूप जैसे अरिहंतों का है वैसा उनका भी है, हा? वो गुरु है, क्योंकि अरिहंत की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक देश शुद्धता उनमें पाई जाती है, और वही संवर निर्जरा मोक्ष का कारण है, यानी संवर कहो, संवर यानी धर्म की उत्पत्ति, निर्जरा यानी धर्म की वृद्धि, और मोक्ष यानी धर्म की पूर्णता, ये कैसे प्रकट होती है, तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही। तो इसलिए बता रहे हैं अरिहंतों का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है वो जितनी क्वांटिटी होगी उसमें से एक देश शुद्धता पार्शल आंशिक बरोबर। ये किन में है, तो कहते हैं गुरु में है, और वही वही कारण है। कौन सा? वह शुद्धता जो आंशिक शुद्धता वो समय समय में बढ़ती जाएगी, तो वह शुद्धता ही संवर मिर्जरा और मोक्ष का कारण है। इसलिए अरिहंत की भांति एक देश रूप से निर्दोष है, वह मुनि भी गुरु है। पहले तो अरहंतों को गुरु बताया, फिर उसके बाद ये छद्मस्थों में से मुनियों को गुरु बताया। मोक्ष मार्ग का उपदेश करने वाले हैं, ऐसा मुनिपना सामान्य रूप से एक प्रकार का है और विशेष रूप से वही तीन प्रकार है। कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। इस प्रकार यह पदवी की विशेषता होने पर, पदवी यानी वो उनका स्टेटस, वो कोई ऐसा डिग्री विग्री नहीं, क्या कह रहे हैं पद, पदवी की विशेषता यानी जुदाईपना होने पर भी उनके मुनिपने की क्रिया समान ही है। ख्याल में जैसा हम बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि कोई विशिष्ट क्लास चल रहा है आठवीं का, तो वहां का जो मॉनिटर होगा वो सातवीं पास ही होगा और बाकी जो अन्य है वो भी सातवीं पास है, लेकिन उसमें कोई खास विशेषता है टू कंट्रोल एवरीबॉडी, वो मॉनिटर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी संघ के जो मुख्य होते हैं उनके आचार्य पद होता है, तो कह रहे हैं पदवी की विशेषता होने पर भी उनके मुनिपने की क्रिया समान ही है, बाह्य लिंग भी समान है। अभी समानता किसमें किसमें है? बाह्य लिंग यानी नग्नता जो है, बाह्य जो कोई है मतलब शरीर की अवस्था, पंच महाव्रत, पंच समिति, तीन गुप्ती, ऐसे तेरे प्रकार का चारित्र भी समान ही है। यानी पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ती, पांच पांच और तीन तेरा, ये तेरह प्रकार का चारित्र उनमें सब में एक जैसा है। तप भी शक्ति अनुसार समान ही है। ये तप कितने देखे थे हमने अभी? आप कहाँ थे मालूम है? अच्छा शक्ति अनुसार समान ही है। साम्य भाव भी समान है। इसका अर्थ क्या हो गया? साम्य भाव समान है यानी वितरकता समान है। वितरकता समान है यानी कैसी है? तीन कषाय की चोकड़ी के अभाव पूर्वक की वितरकता सब में एक जैसी है। मूल गुण और उत्तर गुण भी समान है। ये 28 मूल गुण और उत्तर गुण यानी शील के भेद ये वो सब वो कितने हैं? वो भी समान है। परिचय उपसर्गों का सहना भी समान है, यानी आचार्यों को अधिक उपसर्ग का सहना करना पड़े ऐसा कुछ नहीं है। सबको 22 परिचय है। आहार आदि की विधि भी समान है। चर्या, स्थान, आसन आदि भी समान है। मोक्ष मार्ग की साधना, सम्यक्त्व, ज्ञान, चारित्र भी समान है। ध्याता, ध्यान, ध्येयपना भी समान है। यानी वही ध्याता है, वही ध्यान है और उनका ध्येय भी स्वयं वही है। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेयपना भी समान है। यहाँ ज्ञाता हुआ है वो ज्ञाता कर देना। चार आराधना की आराधना, क्रोधादि कषायों का जीतना, ये चार आराधना कौन सी दी है यहाँ पर? कितने हो गए? हाँ ज्ञान, दर्शन, हाँ किसको छोड़ा आपने? हाँ आचार पांच प्रकार के, आराधना चार, क्रोधादि कषायों का जीतना इत्यादि मुनियों की प्रवृत्ति है, वह सब समान है। विशेष यह है, अभी ये तो तीनों में समानता दिखाई। देखो अभी हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी देखा था ना, कि आचार्य और आचार्य उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप और फिर बाद में आचार्यों का स्वरूप वगैरह वगैरह अलग अलग बताया। वैसे यहाँ पर भी कह रहे हैं जो आचार्य हैं वे पंचाचार को ग्रहण कराते हैं, यानी अन्य जीवों को कराते हैं, तथा अन्य को दोष लगे तो उसके प्रायश्चित की विधि बतलाते हैं, धर्मोपदेश दीक्षा शिक्षा देते हैं। ऐसे आचार्य गुरु वंदना करने योग्य है। अभी ये तो उनकी विशेषता बताई, उसी तरह उपाध्याय की विशेषता क्या है? वे भी वादित्व वाग्मित्व कवित्व कवित्व और गमकत्व इन चार विद्याओं में प्रवीण होते हैं। वादित्व यानी क्या है? हाँ, यानी वो किसी से वाद विवाद करे तो उसमें वह प्रवीण होते हैं, वाद से अन्य मतियों को हराते हैं, जिसको कुछ मालूम नहीं उसको समझाते हैं। वाग्मित्व यानी वांग्मय भी वो लिखते और पढ़ते दोनों है। कवित्व यानी उनमें काव्य करने की क्षमता है। और गमकत्व यानी वो व्याकरण में गमक बोलते हैं ना, उसमें भी उनकी विशेषता होती है। ये चार विद्याओं में वो प्रवीण है। वांग्मय लिखने का जो कोई कला होगी ना, उसमें शास्त्र का अभ्यास प्रधान कारण है। जो स्वयं शास्त्र पढ़ते हैं और अन्य को पढ़ाते हैं ऐसे उपाध्याय गुरु वंदन योग्य है। उनके अन्य मुनिव्रत मूल गुण उत्तर गुण क्रिया आचार्य समान ही होती है। तथा साधु रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग की साधना करते हैं सो साधु है। ये रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग यानी सम्यक दर्शन ध्यान चारित्र रूप जो रत्न त्रय है उसका उसी के साथ जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर है उनके दीक्षा शिक्षा उपदेश आदि देने की प्रधानता नहीं है। वे तो अपने स्वरूप की साधना में ही तत्पर होते हैं। इसलिए कहा है कि जब आचार्य भी हो या उपाध्याय भी हो तो अपना वो पद छोड़कर साधु पद लेते हैं और जब ही स्वरूप में एकाग्र होके श्रेणी मांडते हैं। तो इसलिए कहते हैं ये साधु जो है उनके दीक्षा शिक्षा उपदेश आदि देने की प्रधानता नहीं है। वे तो अपने स्वरूप की साधना में ही तत्पर होते हैं। जिनागम में जैसी निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की प्रवृत्ति कही है वैसी सभी प्रवृत्ति उनके होती है। ऐसे साधु वंदना योग्य है। अन्य लिंगी यानी अन्य वेशी व्रतादिक से रहित परिग्रहवान विषयों में आसक्त गुरु नाम धारण करते हैं। ये विषयों में आसक्त ऐसे जो कोई गुरु है वह अपने को गुरु नाम धारण करते हैं वे वंदन योग्य नहीं है। अन्य लिंगी यानी जो भावलिंगी संत नहीं है, बाह्य में द्रव्य लिंग नहीं है, वो अन्य लिंगी है या अन्य वेशी जिसको हम कहेंगे। तो इसमें तो आप समझदार हो, समझ जाना। जो व्रतादि सही रूप से नहीं पालन करते हैं, भाव व्रत कहो या द्रव्य व्रत कहो दोनों ने परिग्रहवान है, परिग्रह रखते हैं और तो क्या है विषयों में आसक्त। ये विषयों में आसक्त का आज हमारे अरविंद भाई ने अच्छी बात बताई। अरविंद भाई ने बताया ना कि एक ही घर में पड़गाना होता है तो वहीं जाते हैं कि अन्य अन्य घर में जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? कहीं भी अभी भी रसनेन्द्रिय में आसक्ति है क्योंकि भरपेट नहीं मिला तो और ये पसंद नहीं आए तो उसको वे वंदन योग्य नहीं है। इस पंचम काल में जिन मत में भी भेषी हुए हैं वे श्वेतांबर यापनीय संग गोपुच्छ पिच्छ संग द्राविड़ संग आदि अनेक हुए हैं। वे सब वंदन योग्य नहीं है। 150 साल पहले लिखा है भाई ये। मूल संघ नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों के धारक दया के और शौच के उपकरण मयूर पिच्छक कमंडल धारण करने वाले यथोक्त विधि से आहार करने वाले गुरु वंदन योग्य है, क्योंकि जब तीर्थंकर देव दीक्षा लेते हैं तब ऐसा ही रूप धारण करते हैं, अन्य भेष धारण नहीं करते। इसी को जिन दर्शन कहते हैं। ये जैनियों के नहीं है। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये सब भले मिलते जुलते होंगे यहाँ वहाँ, परंतु वो जैन नहीं है, इसलिए वंदनीय नहीं है ऐसा लिखा। जो भी है समझ लो अभी। और तीसरे लाइन से जो कुछ वर्णन कर रहे हैं वे वंदन योग्य है, ऐसा पांचवे लाइन में लिखा है। अब आप जो पूछ रहे यापनीय संघ, गोपुच्छ पिच्छ संघ, द्राविड़ संघ, इनकी जो कोई विशेषता है वो मैं भी नहीं जानता, आप जानते हो? और अन्य वेश भी नहीं करती। इसी को जिन दर्शन कहते हैं ऐसा लिखा। धर्म उसे कहते हैं जो जीव को संसार के दुख रूप नीच पद से मोक्ष के सुख रूप उच्च पद में धारण करे। ये सुख रूप एक शब्द करो, सुख और रूप ऐसा अलग अलग है ना, सुख रूप। देखो यहाँ क्या धर्म को कितनी बढ़िया बात बताई है कि धर्म किसको कहना, कि जीव को जो संसार का दुख रूप जो है उसका, यानी वो नीच पद में है, उससे हटाकर उबार कर मोक्ष के सुख रूप उच्च पद में धारण करें। ऐसा धर्म मुनि श्रावक के भेद से दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक एक देश सर्वदेश रूप निश्चय व्यवहार द्वारा दो प्रकार कहा है। देखो भेद करेंगे तब भी वह व्यवहार हो गया, और उसको दो भेद मुनि और श्रावक, तीन भेद करेंगे तो दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें भी एक देश और उसमें भी सर्वदेश और भेद भेद, तो निश्चय व्यवहार द्वारा दो प्रकार है। उसका मूल सम्यक दर्शन है, उसके बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार देवगुरु धर्म में तथा लोक में यथार्थ दृष्टि हो और मूढ़ता न हो सो अमूढ़ दृष्टि अंग है। देखो इस अमूढ़ दृष्टि को समझाने के लिए अधिक से अधिक समय लिया उन्होंने, क्योंकि वही मूल में भूल होती है ना भाई अपनी। अब आगे बताते हैं पांचवा कौन सा है, उपब्रूहन या उपगुहन। तो कहते हैं अपने आत्मा की शक्ति को बढ़ाना सो उपब्रूहन अंग है। शक्ति को बढ़ाना यानी कि अपने स्वरूप में अधिक अधिक लीनता धारण करना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अपने पुरुषार्थ द्वारा बढ़ाना ही उपब्रूहण अंग है। इसे उपगुहन भी कहते हैं। उसका अर्थ ऐसा अर्थ जानना चाहिए कि जिन मार्ग स्वयं सिद्ध है उसे बालक के तथा असमर्थ जन के आश्रय से जो न्यूनता हो उसे अपनी बुद्धि गुप्त कर दूर ही करे, यानी छिपावे। उसका अर्थ क्या है सबको ढंडोरा पीट कर बतावे नहीं, ये किसकी किसकी बात कर रहे हैं, कोई बालक होगा या कोई असमर्थ है, यानी वो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, ऐसे जीव की कोई न्यूनता हो जाए, उसकी कोई गलती हो जाए तो उसका ढंडोरा नहीं पीटे, उसको छिपा दे, उसे ही कहते उपगुहन अंग। अब पांचवा स्थितिकरण। जो धर्म से च्युत होता है, यानी धर्म से यानी स्वरूप में स्थिरता नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ कारणवश उससे हट रहा है, उसे दृढ़ करना सो स्थितिकरण स्थिरीकरण स्थिरित करण लिखा, वो गलत है, स्थितिकरण चाहिए, री और त निकाल के उधर टी कर देना, स्वयं कर्म के उदय के वश होकर कदाचित श्रद्धान से तथा क्रिया आचार से युक्त च्युत होता है तो अपने को पुरुषार्थ पूर्वक पुनः श्रद्धान में दृढ़ करे। क्या कहा ऊपर, क्या लिखते, स्वयं कर्म उदय के वश होकर कदाचित श्रद्धान से तथा क्रिया आचार से च्युत होता हो तो अपने को पुरुषार्थ पूर्वक पुनः श्रद्धान में दृढ़ करे। उसी प्रकार अन्य कोई धर्मात्मा धर्म से च्युत होता हो तो उसे उपदेश आदि द्वारा धर्म में स्थापित करे, वह स्थितिकरण अंग है। यानी हम भी अपने स्वरूप में एकाग्र होने का रह जाए, कहीं अन्यत्र अपना उपयोग चला जाए तो उसको दोबारा अपने स्वरूप में लीनता करवाना, या अन्य कोई करता हो तो उसको उपदेश आदि के द्वारा उसमें भी स्थिरता लाना स्वरूप में एकाग्रता के लिए, उसे कहेंगे स्थितिकरण अंग। अरिहंत सिद्ध, उनके बिंब, चैत्यालय, चतुर्विध संग और शास्त्र में दासत्व हो, जैसे स्वामी का भृत्य दास होता है। भृत्य यानी क्या समझ में आए, नौकर, दास, किधर है, हाँ भृत्य दास होता है। तद अनुसार वह वात्सल्य अंग है, धर्म के स्थानकों पर उपसर्ग आदि आए उन्हें अपने शक्ति अनुसार, अनुसार हुआ है रर लगा देना, दूर करे, अपनी शक्ति को न छिपाए, यह सब धर्म में अति प्रीति हो तब होता है। ये धर्म और बाद में रह गया है, ये वात्सल्य अंग कब होता है, तो कहते हैं कि अपने को स्वयं को धर्म में प्रीति होती है तो सामने वाला कोई जीव ऐसा धर्म वात्सल्य मिल जाए, मतलब धर्मिक मिल जाए तो उसके प्रति उसको वात्सल्य भाव जरूर आता है। धर्म का उद्योत करना यानी धर्म को बढ़ाना, धर्म को प्रज्वलित करना ऐसा बोलते हैं, सो प्रभावनांग है। रत्नत्रय द्वारा अपने आत्मा का उद्योत करना तथा दान तप पूजा विधान द्वारा एवं विद्या अतिशय चमत्कार आदि द्वारा जिन धर्म का उद्योत करना वह प्रभावना अंग है। इस प्रकार यह सम्यक्त्व के 8 अंग है, जिससे यह प्रकट हो, जिसके यह प्रकट हो उसके सम्यक्त्व है ऐसा जानना। ये भी एक बाह्य अंग कहो या बाह्य लक्षण कहो। प्रश्न, यदि यह सम्यक्त्व के चिन्ह मिथ्या दृष्टि के भी दिखाई दे तो सम्यक मिथ्या का विभाग कैसे होगा, यानी बाह्य में कोई ऐसा सारी क्रिया करता होगा, जैसे सम्यक्ति होते हैं वैसे मिथ्यात्व के तो कदापि नहीं होते, तथापि अपरीक्षक को समान दिखाई दे तो परीक्षा करके भेद जाना जा सकता है। क्या कहते हैं, ये सामने वाला जीव सम्यक दृष्टि है क्या नहीं, ये समझना हो तो क्या करना, तो कहते हैं अपरीक्षक को समान दिखाई दे, यानी जिसको परीक्षा करने को नहीं आता है वह जीव सम्यक को और सम्यक के जैसा आचरण करने वाले मिथ्या दृष्टि को दोनों को एक जैसा मानता है, तो वो क्या करे, तो कहते हैं परीक्षा करके वो उसका भेद जाना जा सकता है। तो परीक्षा करना तो क्या करना, तो परीक्षा में अपना स्वानुभव प्रधान है, यानी हमें स्वयं को सम्यक दर्शन होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। सर्वज्ञ के आगम में जैसा आत्मा का अनुभव होना कहा है वैसा स्वयं को हो तो उसके होने से अपनी वचन काय की प्रवृत्ति भी तदनुसार होती है, उस प्रवृत्ति के अनुसार अन्य की भी वचन काय की प्रवृत्ति पहचानी जाती है। इस प्रकार परीक्षा करने से विभाग होते हैं तथा यह व्यवहार मार्ग है। इसलिए व्यवहारी छद्मस्थ जीवों के अपने ज्ञान अनुसार प्रवृत्ति है, यथार्थ सर्वज्ञ देव जानते हैं। व्यवहारी को सर्वज्ञ देव ने व्यवहार का ही आश्रय बतलाया है। क्या कहते हैं, जो व्यवहारी जीव है यानी अभी जिनको सम्यक तो प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए सर्वज्ञ देव ने उनको व्यवहार का ही आश्रय लेने के लिए बताया। और ये बताने के लिए नीचे छोटे छोटे अक्षरों में फुटनोट दिए है। ये फुटनोट नहीं कहा जाएगा, इन बिटवीन नोट है। स्वानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या कहा, अनुभूति हमने देखा था ना, अनुभूति तो स्वानुभूति, स्वात्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है। ज्ञान के द्वारा सम्यक्त्व का निर्णय करना, उसका नाम व्यवहारी को व्यवहार का आश्रय समझना। क्या कहा, एक आत्मानुभूति हुई है और वो ज्ञान की परिणति है। उस ज्ञान की परिणति से कहना कि इसको सम्यक्त हुआ है, सम्यक्त हुआ यानी उसकी श्रद्धा सही हुई है। तो कहते ज्ञान के द्वारा सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण का निर्मल परिणमन का निर्णय करना, उसका नाम व्यवहारी को व्यवहार का आश्रय समझना। किंतु भेद रूप व्यवहार के आश्रय से वीतराग अंश रूप धर्म होगा, ऐसा अर्थ कहीं पर भी नहीं समझना। अभी यहां तक तो ये हमने क्या नाम जयचंद जी छाबड़ा का, उन्होंने जो भावार्थ लिखा है उसको पढ़ लिया। अभी इसके ऊपर स्वामी जी क्या कहते हैं वो देखेंगे। अब दूसरी गाथा। हाँ जी, हो बीच में चार लाइन रह गई साहब, बहुत अच्छा, घाई हो गई ना। नहीं क्या हो गया, हाँ ऊपर वो स्टार है उसके आगे का लिखना पढ़ना था। यह अंतरंग सम्यक्त्व भाव रूप सम्यक्त्व है, वही सम्यक दर्शन है। ये अंतरंग सम्यक्त्व भाव रूप यानी इस जीव के स्वयं के जो परिणाम है, सम्यक परिणाम, किसमें तीन प्रकार के ज्ञान दर्शन और चारित्र, तो सम्यक्त्व है, उसी को सम्यक दर्शन कहा है। बाह्य दर्शन व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र और तप सहित 28 मूल गुण सहित नग्न दिगंबर मुद्रा उसकी मूर्ति है, उसे जिन दर्शन कहते हैं। हर है क्या देखो, यहाँ तो 8 जो गुण बताए वो तो सम्यक्त्व के बताए, लेकिन अपनी यहाँ मूल बात किसके लिए चल रही है, मुनियों के स्वरूप को समझने की। तो कह रहे हैं बाह्य दर्शन व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र और तप सहित क्या है, 28 मूल गुण सहित नग्न दिगंबर मुद्रा उसकी मूर्ति है, उसे जिन दर्शन कहते हैं। ये दर्शन किसको कहना, दर्शन पावड़ की बात चल रही है ना, तो अलग हर जगह दर्शन का अलग अलग अर्थ बताया। इस प्रकार धर्म का मूल सम्यक दर्शन जानकर जो सम्यक दर्शन रहित है उनके वंदन पूजन का निषेध किया है। क्या बताया अभी,
देखो यहाँ सम्यक दर्शन रहित है, यहाँ मुनियों को ही सम्यक दर्शन सहित कहा
है ना,
यानी अन्य नहीं होते, अंतरंग और बहिरंग दोनों को सहित है, उसका नाम है दर्शन। जो अंतरंग से रहित है बाह्य में ही है उसकी भी बात यहाँ नहीं लेनी है। तो जिन दर्शन कहो या अकेला दर्शन कहो या सम्यक दर्शन कहो, और जो वंदन और पूजन, पूजन की बात है ना, तो सम्यक दर्शन रहित के पूजन नहीं करना, तो क्या सम्यक दर्शन सहित की पूजा करना है? तो चौथे पांचवे वाले के लिए यहाँ नहीं कहा वंदन पूजन की बात, ये तो मुनि के लिए ही कहा है, क्योंकि अंतरंग और बहिरंग दोनों लिए ना, अंतरंग में सम्यक्त भाव रूप सम्यक्त्व और बाह्य में ये दर्शन व्रत बाह्य दर्शन में कौन सा लिया? व्रत समिति गुप्ति रूप चारित्र, अंतरंग दर्शन सम्यक दर्शन, और बाह्य दर्शन व्रत समिति तप वगैरह सब, ये दोनों मिलकर जिन दर्शन कहेंगे, इसी को दर्शन कहेंगे, इसी को सम्यक दर्शन कहेंगे, और उसी को वंदन पूजन योग्य कहेंगे।
इसलिए ये धर्मी जो जीव है उसके धर्म का मूल क्या है तो सम्यक दर्शन। अब गाथा दो पर प्रवचन देखते हैं अभी। अब दूसरी गाथा में यह कहते हैं कि धर्म का मूल क्या है, धर्म का मूल दर्शन है, अतः दर्शनहीन को वंदन नहीं करना, यह इस गाथा में कहते हैं। भगवान ने गणधर आदि शिष्यों को जिस धर्म का उपदेश किया है उसका मूल दर्शन है, यह सुनकर जो दर्शनहीन जीव है वे भव्य जीवों द्वारा वंदन योग्य नहीं है। आगे कहेंगे कि वितराग दिगंबर मुनि की जो मुद्रा है उसे ही दर्शन कहते हैं। मैंने बताया ना, दर्शन का मतलब उसका अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ किया है। जिनके अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो तथा 28 मूल गुणों सहित नग्न दिगंबर मुद्रा हो, इसे ही जिन दर्शन कहते हैं। या अभी बताया ना, जैसे मुनि अरहंत होते उस रूप एक देश
जिन दर्शन, एक शब्द नहीं, इसे ही जिन दर्शन कहते हैं।
अच्छा चलो,
यानी जिनेंद्र भगवान इसे दर्शन कहते हैं।
बहुत अच्छा। ऐसा जो जिन धर्म उसका मूल सम्यक दर्शन है, ऐसा जानकर जो सम्यक दर्शन से रहित है वे भव्य जीवन द्वारा वंदन पूजन योग्य नहीं है। यहाँ दर्शन कहने से मुनिवरों की अंतर बाह्य निर्ग्रंथ मुद्रा का वर्णन लिया है। क्या कहा? दर्शन कहने से मुनिवरों की अंतर बाह्य निर्ग्रंथ मुद्रा का वर्णन, मुद्रा यानी उनका चेहरा नहीं, यानी जो अंतरंग की दशा है और साथ साथ में बाह्य दशा कैसी है, दोनों ही निर्ग्रंथ है। यानी अंतरंग में भी किसी परवस्तु के साथ उनके एकत्व बुद्धि नहीं है, उनसे कोई लगाव नहीं है, इसलिए वो अंतरंग में भी निर्ग्रंथ है और बाह्य में भी निर्ग्रंथ है। ऐसा जो उनका स्वरूप है उसका वर्णन लिया है। बाहर का व्यवहार भी निर्ग्रंथ मुनि दशा रूप ही होता है। ये बाहर का व्यवहार यानी जो 28 मूल गुण पालन करने के आदि जो परिणाम चल रहे हैं वह भी निर्ग्रंथ मुनि दशा रूप ही होता है। निश्चय के साथ व्यवहार की संधि भी योग्य ही होती है। भगवान श्री सिमंदर परमात्मा के समीप जाकर कुंद कुंदाचार्य देव ने 8 दिन तक दिव्य ध्वनि सुनी। उसमें भगवान ने जिस मार्ग का प्रतिपादन किया वही मार्ग कुंद कुंदाचार्य देव ने यहाँ दर्शाया है। अब ये 3 लाइन पढ़ के बंद करेंगे। अहो मुनि दशा तो अलौकिक है, एक दिन में 2 बार आहार ले या वस्त्रादि रखे ऐसा व्यवहार मुनि दशा में होता ही नहीं है। मुनि दशा दिगंबर ही होती है। तथा मुनिराज दिन में 1 ही बार खड़े खड़े कर पात्र में आहार ग्रहण करते हैं। कर यानी हाथी जिनका पात्र है उसमें वो आहार लेते हैं। विशेष बात हम 31 तारीख को करेंगे। जावानी का ज्ञान कहे सूझे लोक